نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سورة البقرة. اچھا ایک تو اس کو صحیح پروناؤنس کرنا بھی آنا چاہیے, بقرہ ہے بکرا نہیں ہے, یہ وہ اردو والا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کو صحیح پروناؤنسیشن آنی چاہیے, کوئی بھی بکرا نہ کہے. با اور قاف کے اوپر دیکھیں فتحہ ہے, زبر ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں پہلے ترجمہ لکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ و تعالی تفسیر کی طرف چلیں گے. امید ہے آپ کے پاس آپ کی نوٹ بکس ریڈی ہوں گی, اور جو میں رولز لکھواتی ہوں اور جو میں نے انڈر لائن کروائے تھے الفاظ, آپ نے کوشش کی کہ اس ہفتے آپ ان کو ریوائز کریں یا ایوری ڈے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سامنے لگا لیں, اور ضرور دن میں ایک دو دفعہ تو ضرور ان کو دیکھیں. 30 سیکنڈ کے لیے آپ کی نظر ان کے اوپر ہونی چاہیے, ان الفاظ پہ, ٹھیک ہے؟ تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں وہ. جتنی جلدی وہ ذہن میں بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے آگے آگے آپ کے لیے اور آسانیاں ہوتی جائیں گی. اور قرآن بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, آپ لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا. ابھی تو سٹارٹ ہوا نا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے آگے آسانی ہوتی جائے گی. پھر ایسے سبق آیا کریں گے کہ آپ کو چند ایک الفاظ ہی یاد کرنے پڑیں گے, باقی سب آپ کو آلریڈی آتے ہوں گے الحمدللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کے ساتھ, اس کے لیے صبر چاہیے, ٹھیک ہے؟ صبر ہے نا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر صرف غم کے موقع پہ نہیں ہوتا, صبر اس میں بھی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے راستے میں جمع رہے. صبر کا مطلب ہی خود کو رو کے رکھنا. تو اگر انسان بھاگ جائے تو وہ تو بے صبری ہے, ٹھیک ہے؟ تو صبر کا معنی سمجھیے, یہ بھی آپ کا صبر ہے کہ آپ چلتے جائیں, چاہے مشکل آئے آسانی آئے چلتے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تک ہم دو گروہوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, تیسرے گروہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے تو شروع میں کس کا ذکر ہے, کیا بتائیں گے آپ کیا بتائیں گے کہ شروع کی 16 آیات کس بارے میں ہے, یعنی سٹارٹ کیسے بتائیں گے آپ؟ اگر یہ کہیں گے نا کہ اس سورت میں شروع میں تین قسم کے گروہوں کا ذکر ہے, پہلا گنے کی نہیں ضرورت, صرف آپ سنیں میری بات کو, اچھی طرح سنیں سمجھیں اس بات کو, ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں پہلا گروہ نکالیں, اپنا پرانے پاک میں پیچھے جائیں, الف لام میم سے لے کے آیت نمبر 5 تک کس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ متقین کا, ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیے 6 اور 7 میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو کفار ہیں. پھر آگے اگر بریکٹ لگانی ہے تو لگا سکتے ہیں, یہاں سے یہاں تک یہ, یہاں سے یہاں تک یہ. پھر آگے آیت نمبر 8 سے لے کے آگے انشاءاللہ تعالی 20 تک ہم آگے پڑھیں گے, نیکسٹ ٹائم ہم اس کو مکمل کر لیں گے اس مضمون کو انشاءاللہ تعالی. تو 20 تک کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقین. اب پوچھا جائے اگر آپ سے کہ منافقین کا اتنا زیادہ ذکر کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ متقین کا ہوتا تو سمجھ بھی آتی, کافروں کا زیادہ ہونا چاہیے تھا, منافقین کا اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کو پہچاننا بہت مشکل ہے, نہ ان کو خود پتا ہے کہ ہم منافق ہیں, نہ کسی اور کو پتا ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نام بتائے تھے منافقین کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا. ہاں کچھ منافق اتنے آبویس ہو جاتے ہیں, جیسے عبداللہ ابن ابی تھا, اتنے آبویس ہو جاتے ہیں, ان کی حرکتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے, رئیس المنافقین, سارے منافقین کا بڑا سردار وہ تھا. لیکن ادر وائز یہ ظاہر ہے گلے ملے سارے, اسی طرح کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے, نمازیں بھی پڑھنے آتے ہیں مسجد میں, روزے رکھتے ہیں, مطلب جہاد وغیرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن وہ ہیں منافق. पता कैसे चलेगा? अब इसको पहचानना तो मुश्किल है ना फिर, कि कौन है जो सही है और कौन है जो गलत है। एक दफा एक सहाबी के बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गजवे में गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा था, तो किसी ने खड़े होकर कहा वो तो मुनाफे के आया ही नहीं है वो साथ ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं है। यानी हो सकता था कि एक दूसरे को भी वो समझने लगते कि ये फलां मुनाफिक है, किसी को भी 100% किसी के बारे में ऐसा इल्म नहीं था कि ये फलां मुनाफिक है और फलां नहीं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया, और आपने किसको सिर्फ बताया था? हजरत हुज़ैफा बिन यमान को, और राजदान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनका जिक्र है। अब कहने को तो ये भी काफिर ही है, क्योंकि वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन है ही नहीं, ईमान वाले है ही नहीं, अल्लाह ताला ने इनके ईमान को रिजेक्ट कर दिया, तो ईमान वाले तो ये नहीं है, हैं तो ये काफिर ही। मगर काफरों के साथ इनको क्यों नहीं शामिल, इस तरह से इन आयात में ऐसे क्यों नहीं आया कि इन लदीना कफरू, इनको भी कहा जाता? नहीं, इसलिए क्योंकि डिक्लेयर ही अपने आप को यही करते थे कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, एक बंदा खुद ही कह देता ना कि मैं नहीं मानता, तो वो उसकी तो पहचान आसान है। एक बंदा कह रहा है मैं मुसलमान हूं, अब आपको क्या पता, आपने तो नहीं उसका दिल देखा। तो इन बातों से कुछ चीजें जो पता चलती हैं हमें वो ये हैं कि देखें, अल्लाह ताला के हाँ ये क्राइटेरिया नहीं है कि कोई खुद को मुसलमान डिक्लेयर कर दे तो उसको मुसलमान समझ लिया जाए, बल्कि अल्लाह ताला के हाँ क्या क्राइटेरिया है, इन्ना आमालु बिन्नियात, नियत के ऊपर डिपेंड करते हैं आमाल। नियत तो दिल में होती है ना, तो जो दिल से ईमान लाया होगा वही ईमान वाला है, उसके ईमान को कबूल किया जाएगा, बाकी किसी के ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा जो जुबान से बोलता रहे। दुनिया में भले इंसान मुतमईन रहे और खुद को मुस्लिम कहलाता रहे, मगर अल्लाह के हाँ वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, ये अच्छी तरह बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा ईमान अगर अल्लाह ताला कबूल करेगा तो ही हम मोमिन हैं, वरना दुनिया के रजिस्टर में हम मुसलमानों के खाने में चाहे हमारा नाम लिखा हो या हमने अपना नाम मुसलमानों वाला रखा हो, इससे हम मुसलमान नहीं हो जाते। क्योंकि ईमान लाना किसके लिए? अल्लाह के लिए, और उसी ने ईमान नहीं एक्सेप्ट किया तो दुनिया की नजरों में चाहे मैं बहुत बड़ी दीनदार कहलाऊं, चाहे ईमान वाली कहलाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या पता चलता है कि दुनिया वालों की नजरों में हमने ईमान वाला बन बन के दिखाना नहीं है, या दावे कर करके खुद को, ऐलान कर करके खुद को बहुत दीनदार जाहिर करने का उसका फायदा नहीं है जब तक कि हमारा रब कबूल ना कर ले। और रब कब कबूल करता है? जब दिल के अंदर की बात और जुबान की बात मैच करें। दिल को चेक करें कि इस वक्त मेरा दिल कितना ये कोई भी नहीं बता सकता कितना खालिस है, कितना मेरे अंदर ईमान है, मेरे दिल में कितना खोट है, क्या है, कोई भी मेरे दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकता सिवाय एक जात के, और वो अल्लाह ताला की जात है। सिर्फ वो जानता है कि दिल के अंदर छुपी हुई क्या बात है, इसीलिए वो ही बता सकता है कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है। तो मुनाफिक की जो निशानियां हैं वो तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं, कुछ निशानियां इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे, मगर असल निफाक क्या चीज होती है? खोटी तो है निफाक, कोई चीज भी अगर खोटी हो जाए तो इंसान अपने लिए पसंद नहीं करता, तो खोट का पता कैसे चलता है? खोट का पता कैसे चलेगा? कोई चीज आपको अपने लिए खोटी पसंद है? खोट तो पता ही नहीं चलता ना, खोट तो अंदर होता है, छुपा होता है। अब मिसाल के तौर पर दूध में किसी ने पानी मिलाया, पता नहीं चलेगा? कोई आपके ऊपर ऊपर से अच्छा बन के दिखाता है, अंदर से उसके अंदर आपके लिए नफरत है या बुराई है, तो पता नहीं चलता, अल्लाह ताला उसको जाहिर करते। तो कोई भी खोट को पसंद नहीं करता। अगर आपको पता चल जाए ना कि खोट है तो आप कभी नहीं पसंद करेंगे। आपको जब पता चल जाता है कि अच्छा इसके दिल में मेरे लिए बुराई है, चाहे ऊपर से ये बहुत अच्छी बन रही है, तो पसंद करते हैं आप फिर उसको? अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता ना। तो कैसे मुमकिन है कि अगर हमारे अंदर खोट हो और इतनी अजमतों वाला रब हमें कबूल कर ले? क्योंकि उसको तो सारे खोट पता है, पता चलने के बाद कोई नहीं एक्सेप्ट करता। हाँ छुपा रहे तो फिर तब तक आप उसको अच्छा समझते रहेंगे, अपनी सहेली समझते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपके सामने खोट आ गया उसी दिन आप उसको रिजेक्ट कर देंगी ना। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त ही हमारे खोट जानता है, उसको तो पता है किसके दिल में कितना खोट है और कितना इखलास है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के खोट से बचा लेना, निफाक की एक एक कलामत हमारे अंदर से निकाल दे। ये भी एक जिहाद है, और ये डिस्कस करने से सिर्फ रिमूव नहीं होता, जब तक कि इंसान अमली कोशिश ना करे। और अमली कोशिश में सबसे पहले तो इल्म लेना है ना, हमें पता तो चले निफाक है क्या, फिर ही हम इसको अंदर से निकालेंगे ना। मैंने आपको दुआ भी बताई थी, अल्लाहुम्मा तहहिर कल्बी मिनन निफाक, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे निफाक से, वअमली मिनर रिया वलिसानी मिनल कज़ब वअईनी मिनल खियाना। मसनून दुआ है ना ये, فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور, तू तो आंखों की खयानत भी जानता है, जो दिलों के अंदर छुपा हुआ उसको भी जानता है। अल्लाह तो दिलों को हमारे पाक कर दे निफाक से, बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। तो निफाक की कुछ अलामात तो हमने पढ़ ली है, क्योंकि ये छुपा हुआ होता है ना, इसलिए एक एक अलामत पे गौर करना है और समझ लें कि हमारे सामने एक मिरर है, शीशा पड़ा हुआ है, और उसके अंदर हम चेक करें कि ये चीज तो नहीं है मेरे अंदर, ये चीज तो नहीं है मेरे अंदर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी और को मुनाफिक डिक्लेयर करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनाफिकत कहाँ होती, मैंने आपको क्या बताया, खोट कहाँ होता है, छुपा हुआ होता है अंदर। और कोई भी हम में से ये दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी के अंदर को जानती हूँ। हाँ हो सकता है आपको ये क्वालिटीज किसी के अंदर एकदम सोच में आए कि हाँ फलां के अंदर ये है, फलां लोग हैं या फलां बंदी है उसके अंदर ऐसी बात है, लेकिन आप उसको मुनाफिक नहीं कह सकती। नंबर टू क्या बात है, आप खुद को महफूज ना समझे, कोई भी नहीं खुद को महफूज समझे। देखिए अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फिक्र है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूं, तो हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए फिर। और अगर हजरत हंजला को ये फिक्र है कि वो ये कहते फिर रहे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, एक सहाबी रसूल हैं, पक्के सच्चे हैं, ईमान वाले हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, हंजला मुनाफिक हो गया। तो हजरत अबू हुरैरा ने पूछा था, सुभान अल्लाह ये क्या बात है, तो कहने लगे कि मैं जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत का जहन्नुम का वाज फरमाते हैं, उस वक्त तो मेरी हालत ये होती है जैसे कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूं, और जब मैं वहां से चला जाता हूं, बीवी बच्चों में जाता हूं, घर में जाता हूं, जायदाद के किस्से होते हैं, उनमें ऐसे मशगूल हो जाता हूं कि कुछ याद ही नहीं रहता। तो अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही सुन रहे थे, फरमाने लगे वल्लाही मेरी भी यही हालत होती है, चलो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया या रसूलुल्लाह हंजला तो मुनाफिक हो गया। फरमाया क्यों, कहने लगे या रसूलुल्लाह खुद ही कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मैं आपकी खिदमत में होता हूँ तो ईमान की हालत कुछ और होती है, घर जाता हूँ तो कुछ और होती है, बीवी बच्चों में दुनिया के धंधे में लग जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हमेशा वही हालत रहती ना जो मेरे पास रहती है, तो फिर तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पे और रास्ते में आकर तुमसे मुसाफा करते, शेक हैंड करते। लेकिन हंजला ये हालत कभी कभी हुआ करती है, यानी एक जैसी नहीं रहती। सुभान अल्लाह, यानी कभी सोचे उनको इतनी फिक्र होती थी कि उनको इस बात से परेशानी हो गई कि सुभान अल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हैं, कुछ और ईमान की हालत है, घर में गए कुछ और हो गई, इसका मतलब हम मुनाफिक हो गए। वहां पे कुछ और घर में कुछ, क्योंकि मुनाफिक तो यही होता है ना, इधर कुछ उधर कुछ, सामने कुछ पीछे कुछ, दिन को कुछ रात को कुछ, जाहिर में कुछ बातिन में कुछ। तो इसलिए उनको परेशान हो गया कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, अरे मैं तो मुनाफिक हो गया, देखो मैं घर जाता हूं तो मैं कुछ और ही हो जाता हूं, जरूरत थोड़ी है ऐसा रहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ईमान का घटना बढ़ना तो होता है, कभी ईमान नीचे चला जाता है, लेवल ऊपर चला जाता है, कभी फिर डाउन हो जाता है। तो जितना इंसान दुनिया के धंधों इसमें रहता है, इल्म की मजलिस से दूर रहता है, सालेहीन की मजलिस से दूर रहता है। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तो अल्लाह के जिक्र की मजलिस होती थी, इल्म की मजलिस होती थी, जितनी देर उसमें रहेंगे ईमान का लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना फिर आप उससे दूर रहते हैं बाकी दिन, आप खुद देखें जिस दिन आप क्लास में होते हैं उस दिन ईमान का लेवल क्या होता है, और ड्यूरिंग द वीक फिर कैसे होने लगता है, डाउन होता है ना। तो ईमान के लेवल्स हैं, हो सकता है ईमान का लेवल कमजोर हो जाए लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मुनाफिक हो गया। तो मुनाफकत हम नहीं जान सकते, ये अल्लाह ताला को पता है कौन मुनाफिक है, तो हम किसी के ऊपर फतवे ना दें। आप इसे अंदाजा कीजिए कि उसामा बिन ज़ैद जो थे एक जंग में थे और काफिर से लड़ रहे थे, तलवार लेके जब उसके ऊपर पहुंच गए उसकी तलवार गिर गई और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। इन्होंने तलवार जब उठाई तो कहने लगे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब जाहिर है साफ पता चल रहा है कि अभी तो काफिर था और अभी जान बचाने के लिए मुसलमान हो रहा है, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके वाकया सुनाया कि इसे इस तरह उसने किया और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ना फौरन कलमा पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने उसका सीना चीर के देखा था, क्या तुमने उसका सीना चीरा कर देखा था कि उसने ये दिल से कहा या नहीं कहा, तुम्हें क्या पता कि उसने दिल से कहा या नहीं कहा। तो इस बात से क्लियरली पता चलता है कि अगर हजरत उसामा बिन ज़ैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना, हालांकि बात बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है उसने इसी वजह से कहा होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि तुमने क्या, तुम्हें पता है उसके दिल का, अगर उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया, जब तुम किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते, चाहे हालात बिल्कुल ऐसे हैं साफ जाहिर है फिर भी नहीं तुम कह सकते, तो आप सोचें फिर कोई और कैसे कह सकता है कि फलां मुनाफिक है। और एक और तीसरी बात भी नोट कर लीजिए कि मुनाफिक हर जमाने में होंगे, कभी भी ये सोच के इन आयात को ना पढ़िएगा कि ये मदीना में रहने वाले औस और खजरज में या यहूद में जो लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए थे उसके बाद वो मुनाफिक हो गए, ये उनकी बातें हो रही हैं, ये सारा उनका जिक्र हो रहा है। अगर आपने ये सोचा ना तो ये आयात आपके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि याद रखें ये सिफात हर जमाने में लोगों में होंगी। आप मुंह नहीं खोल सकते किसी के बारे में कि ये मुनाफिक है, मगर ये नहीं कह सकते कि आज नहीं मुनाफिक, ये हर जमाने में होंगे। और हमें सबसे पहले अपनी फिक्र करनी है ये हमारे अंदर ये जर्म्स तो नहीं आ गए, ये बीमारी तो नहीं लग गई, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये मर्ज है, ये बीमारी है। सहाबा कराम एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि या रसूलल्लाह कुरान पाक की बाज आयतें तो हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी धारस होती है, बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी उम्मीद बन जाती है, और बाज आयतें तो हमारी कमर तोड़ देती हैं, ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी की पहचान साफ साफ बता दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम से मुफ्लिहून तक पढ़ के फरमाया ये तो जन्नती हैं। साहबा ने खुश होकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनके अंदर ये सिफात थी, फरमाया हमें उम्मीद है कि हम इन्हीं में से होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लज़ीना कफरू से लेके अज़ाबुन अज़ीम तक ये आयात तिलावत फरमाई और फरमाया ये जहन्नमी है। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं है। और ये वाले जो है ना, अब इसके बाद वाले जो लोग हैं इनके बारे में तो इंसान अब अपना मुहासबा खुद ही करे अच्छी तरीके से तो पता चल सकता है, अदरवाइज वही वाली बात है कि अगर इंसान अपने आप को धोखे में रखता रहे और अपने आप से झूठ बोलता रहे, नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मेरा तो ये तो बिना क्या यख बिबून, क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वजह इसके जो वो झूठ बोलते थे, वो झूठ बोला करते थे मुनाफिकीन की। ये अलामत है जो तीन अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। पहली निशानी क्या है, जब बात करता है झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलना, अपने आप से भी झूठ बोलता है, नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, अपने आप को अपने अंदर ही तसल्ली दिलाता जा रहा है, तो किससे झूठ बोल रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को। वमा युखादिउना इल्ला अन्फुसहुम, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अब अपने आप से झूठ बोलेंगे कि मेरे मेरे अंदर तो ये नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। तो पहली निशानी क्या है, झूठ बोलते हैं। दूसरी निशानी क्या है, जब वादा करता है तोड़ देता है, वादे का उसको पास नहीं होता कि जब मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई अहद किया है, तो मैंने उसको पूरा करना है। नंबर थ्री, जब अमानत उसके पास रखी जाती है खयानत करता है। और हदीस में इससे आगे जो बात है ना वो बहुत खतरनाक बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा के फरमाया, खा वो रोजा रखे खा नमाज पढ़े और ये समझे कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर उसके अंदर ये तीन अलामत है तो वो मुनाफिक है। और एक और हदीस में चौथी भी अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इन तीन के अलावा, और वो क्या है कि जब झगड़ा करे, जब झगड़ा हो ना तो गालम गलोच पे उतारे, झगड़ा करते वक्त इतना अपने से बाहर हो जाए कि उसको यही नहीं पता, फिर उसकी बाद जुबान जो है ना क्या मुगल्लेजात निकल रहे हैं जुबान से, क्या गालम गलोच निकल रही है, कोई होश ही नहीं, अब पता ही नहीं चल रहा कि ये वही बंदी है जो पहले आगे पीछे तो इतनी काम है, कूल रहती है, अच्छी भली बड़े अच्छे अखलाक की रहती है, इसको क्या हो गया, यानी झगड़ा हुआ नहीं तो असलियत निकल आई अंदर से, और जो अंदर था ना वो बाहर आ गया, ये मुनाफिक की निशानी है। और मुनाफिकीन वल मुनाफिकात कुरान कहता है, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इसका मतलब औरतें भी मुनाफिक होती हैं। चलिए जी, अब देखते हैं आयत 11 से। इनसे एक चीज का इनको हुक्म दिया गया और एक चीज का इसे इनको रोका गया। आयत 11 में वो है जिसे इनको रोका गया और आयत 13 में वो है जिसका इनको हुक्म दिया गया यानी इनको कहा गया। वह इज़ाकीला, और जब कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लहुम उनसे, किनसे किनसे कहा जाता है, ये जिनकी बात पीछे हो रही है, जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पे, हम ईमान लाए आखरत पे, जब इनसे कहा जाता है ना कि ला तुफ्सिदु फिल अर्द, जमीन में फसाद ना करो। फसाद फिल अर्द क्या है, इनको इससे मना किया जाता है, क्या है फसाद फिल अर्द। फसाद फिल अर्द की सिंपल सी अगर आपको बात की जाए ना, एक तो वो फसाद है ना कि दरख्तों को काट देना, खून खराबा करना, करप्शन करना, ये सब चीज फसाद है, अगर ये एक लिमिटेड माना है। फसाद का माना असल में ये होता है कि देखें ये जमीन किसकी है, अल्लाह की, इस पे किसका हुक्म चलना चाहिए, अल्लाह ताला का, किसकी मर्जी चलनी चाहिए, किसकी मर्जी के मुताबिक यहां पे जिंदगी गुजारनी चाहिए, अल्लाह ताला की ना, जब जिसका घर है आप उसी के मुताबिक चलेंगे, या आप किसी के घर जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी, तो जमीन किसकी है ये बताएं। सुभान अल्लाह, किसी को कहते हुए ये सुना कि हम आजाद हैं तो फिर हमारे ऊपर ये पाबंदियां क्यों है इस्लाम की, इस्लाम हमारे पर पाबंदी क्यों लगाता है, कभी हिजाब की कभी किसकी, अल्लाह अकबर, तुम किसकी जमीन पे रह रहे हो भाई, घर में तो कोई आ जाए तुम्हारे और कहे मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी, ये चीज यहां रखो वो चीज वहां रखो, इस वक्त उठो इस वक्त सो, तो तुम कहोगे तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले, मेरा घर है इसमें मेरा हुक्म चलेगा, इतनी तो सेंस है, इतने अकलमंद हैं कि अपने घर में तो अपनी मर्जी के अलावा किसी और की मर्जी चलने नहीं देते, और जमीन पे सोचते हैं कि हमारी मर्जी चले, और अल्लाह की मर्जी नहीं चलनी चाहिए, या तो ये कह दो ये जमीन हमारी है। जब तुम ये मानते हो कि ये अल्लाह की है,